हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 104 आदित्य सुनैना को अपने साथ उस बंगले में ले गया जहाँ उन दोनों की शादी हुई थी। ये उसका पुश्तैनी बंगला था जहाँ वो पहले अपने परिवार के साथ रहता था। वो सुनैना को वहाँ सारी पुरानी बातें बताने ले गया था, लेकिन हाल में खड़े होकर सुनैना को शादी वाले दिन की बातें याद आ गईं और वो आदित्य से वही सारी बातें करने लगी। इसी बीच आदित्य उसके एकदम करीब आकर अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब कर लिया। आदित्य को इस तरह खुद के इतना करीब आते हुए पाकर सुनैना अपनी आँखें कसकर बंद कर लीं। आदित्य उसके एकदम करीब आते हुए उसके नाजुक से गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। सुनैना को जैसे ही अपने लबों पर आदित्य के तपते होठों की छुअन महसूस हुई, एक मीठी सहरन उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसने अपने हाथ से आदित्य की बांह कसकर पकड़ ली और शायद एक्साइटमेंट की वजह से अपने नाखून उसकी बांह में गाड़ दिए, जिसका एहसास शायद उसे खुद भी नहीं हुआ। वे दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार और शिद्दत से किस करते रहे। इस तरह किस करते हुए सुनैना ज्यादा एक्साइट हो गई और आदित्य उसे पीछे की दीवार से लगा दिया। सुनैना की दीवार से लगते ही उस दीवार पर लगी पेंटिंग जमीन पर गिर गई। पेंटिंग के जमीन पर गिरने से आदित्य और सुनैना दोनों का ध्यान उस तरफ गया। सुनैना आदित्य की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर उसे खुद से दूर धकेला, जैसे आदित्य भी होश में आया और अपने बालों में हाथ डालते हुए सुनैना की तरफ देखकर मुस्कुराया। सुनैना अभी भी मुस्कुराती हुई अपने लाल चेहरे के साथ खुद में सिमटी हुई खड़ी रही, नीचे फर्श की तरफ देखते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार भी हमेशा की तरह क्या हो गया। जब आदित्य उसके नज़दीक आता और उसे इस तरह से प्यार से किस करता, तो वो क्यों कभी भी उससे दूर नहीं जा पाती। तभी सुनैना को जैसे कुछ याद आया और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ और बात करने की सोची रही थी कि तभी आदित्य की तरफ देखकर बोली, कुछ बताने के लिए लाए थे ना तुम मुझे यहाँ? हाँ, आया तो उसी लिए था, लेकिन फिर तुम्हें देखकर हमेशा ही ध्यान भटक जाता है मेरा। आदित्य उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ध्यान नहीं भटकता, मैं तो हमेशा ही साथ होती हूँ, लेकिन तुम हमेशा तो ऐसा नहीं करते। सुनैना ने एक सांस में ये बात बोली, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो क्या बोल गई, वो अपने दांतों तले अपनी जीभ काट लेती है और थोड़ा सा अटकती हुई बोली, मेरा मतलब है कि, अच्छा, हमें तो पता नहीं था कि हमारी धर्मपत्नी जी चाहती हैं कि हम हमेशा ही उनको इस तरह। आदित्य मुस्कुराते हुए सुनैना की तरफ बढ़ते हुए उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आदि, प्लीज स्टॉप इट, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और बताओ अब, सब कुछ बताने के लिए लाए थे ना यहाँ मुझे, और कहीं से भी शुरुआत नहीं की तुमने अभी तक, शायद तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते अपने बारे में कुछ भी। आदित्य की तरफ देखकर नाराजगी दिखाते हुए सुनैना काफी मायूस होती हुई बोली। आदित्य उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़कर उसे अपने साथ लेकर सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। सुनैना समझ गई कि शायद उसकी कही बातों का आदित्य को बुरा लगा है, लेकिन इस वक्त वो आदित्य को मनाने से ज्यादा उसके बारे में जानना चाहती थी और पूरी तरह से समझना भी। और उसके बाद तो वो जानती थी कि आदित्य उससे कितना प्यार करता है, तो वो ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ अक्षत नैना को अपने घर ले आया। ये एक बहुत ही बड़ा, एकदम नया और मॉडल डिजाइन का बना बंगला था। वो बंगला एकदम पॉश एरिया में बना था जहां और कई सारी सेलिब्रिटी और नामी लोगों का बंगला था। उस जगह पर ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी और सड़कें भी एकदम सुनसान थीं। नैना इतना तो समझ गई थी कि शायद वो उसे अपने घर ले जा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अक्षत उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है और वो उससे इस वक्त क्या बोले। किसी भी तरह से मना तो वो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मदद की जरूरत तो उसे भी थी। ये सब सोचते हुए नैना के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और वो काफी ज्यादा डर और घबराई हुई लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले के हालातों को सोचकर। इतना क्या सोच रही हो, बोल दो जो बोलना है और पूछ लो, मैं भी इंसान हूँ, काट नहीं लूंगा तुम्हें जो इतना डर रही हो। अक्षत नैना को इस तरह से देखकर माहौल को थोड़ा हल्का करने और नैना का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ऐसी बात बोला। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या पूछूं? वैसे तुम अपने घर ही ले आए होगे मुझे, इसलिए क्या बोलूं मैं? हाँ, ये तो मेरा ही घर है। अब तुम तो पता नहीं रही थी कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो क्या मैं भी अपने घर वापस ना आऊंगा? तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ पर छिपकर रह सकती हो, आई एम सीरियस। और वो जो तुम्हारा स्टॉकर है वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, यहाँ तुम सेफ रहोगी। नैना की बात सुनकर अक्षत उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। अब तक उसकी कार उस बंगले के मेन गेट से अंदर आ गई थी और बंगले के अंदर जाने वाले दरवाजे के सामने कार रुक गई। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब कि मेरी मदद? इतना सब होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं और किस पर भरोसा करूं? अक्षत की बात सुनकर नैना उसकी तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। अक्षत भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे भी सच में समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों सिर्फ नैना की एक आवाज़ सुनकर वो उसकी मदद करने गया था और फिर उसे इतना रिस्क लेकर अपने साथ वहां से लेकर यहां आया और अब उसे अपने घर में रुकने को भी बोल रहा था। क्रमशः